نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اسلاف کا رمضان اسلاف کا لفظ سلف سے ہے اور سلف حلف کی اپوزٹ ہے حلف اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا خلف اولاد خلف بعد میں آنے والے سلف یا سلف پہلے سے گزرے ہوئے لوگ آج ہم انشاءاللہ اس موقع پہ دیکھیں گے کہ رمضان جو اتنا خوبصورت مہینہ ہے اور ساتھ ہی بتا دوں کہ ہم اس موضوع پہ بات کیوں کرنے لگے ہیں جیسے بارش کے آنے سے پہلے ہوا چلنے لگتی ہے نا تو رمضان کی آمد آمد ہے دلوں میں بھی ایک نیکی کا شوق اور جذبہ آ رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ ہم کچھ کریں ہے نا ایسا یہ مت سوچئے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی یہ باتیں کریں اور یہ اب کر لیں تو پورا سال نہیں کرنی لیکن یادیں ہوتی ہیں نا ہر موقع جب بھی آتا ہے تو ہم اگلے سال پھر اس کے آنے پہ تھوڑا سا ضرور یاد کرتے ہیں پچھلے سال ہم یہاں تھے پچھلے سال پاکستان آئے تو یہ ہوا فطری سی بات ہے یہ غیر فطری ہوگا کہ ہم ایسی یادوں کو ذہنوں سے نکال دیں ہم سالگرہ نہ بھی منائیں ہم دنوں اور ہفتوں مہینوں کو نہ بھی منائیں لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو حقیقت ہے کہ جب بھی شعبان کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو ذہن میں آنے لگتا ہے کہ اب اگلا مہینہ رمضان کا ہے تو آج انشاءاللہ تعالی اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف کا رمضان کیسا ہوتا تھا اور دیکھیں گے کیوں کیونکہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ کے نبی کا ہر قول فعل اور عمل ہمارے لیے قابل حجت بھی ہے ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے اسی نبی نے ایک بہت ہی پیاری خبر دی تھی اور وہ کیا دی تھی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے اور اس کے بعد ان کا جو ان کو ملیں گے اور اس کے بعد ان کو جو ان کو ملیں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد تبع تابعین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دی تھیں کہ یہ لوگ بہترین لوگ ہیں تو جب بھی لفظ اسلاف آئے گا سلف آئے گا تو یاد رکھیے سب سے پہلے اس میں صحابہ کرام آئیں گے پھر تابعین تبع تابعین پھر اسی میں آئمہ کرام پھر محدثین ڈے بائی ڈے خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم تو آج انشاءاللہ تعالی ہم صحابہ کرام کے دور سے چلتے چلتے کچھ شخصیات تک پہنچیں گے اور یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک گائیڈ لائن مل جائے کیونکہ انسان دوسرے کے عمل سے بھی سیکھتا ہے اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ صحیح بخاری میں 3650 نمبر کی حدیث ہے اور یہ وہ بہترین دور تھے کہ جن کو اللہ تعالی نے چنا میں اس وقت چند جملے صحابہ کرام کی تعریف میں بول دوں صحابہ کرام اس دین اسلام کی عمارت کے معمار تھے اینٹیں پتھر ڈھونے والے مشکلات سہنے والے تھے اگر آج آپ کو اسلام کا خوبصورت محل نظر آتا ہے تو اس میں صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں آپ کا خون اور آپ کا پسینہ ہے جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان بنا تو بڑے لوگوں نے قربانیاں دی جب بھی کوئی چیز شروع میں ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری قربانیاں آتی ہیں جیسے یہ چند دن پہلے یہ کلاس کے دوران بات ہو رہی تھی احرام مصر کی تو میں نے اس میں بھی یہ جملہ بولا تھا کہ آج وہ احرام مصر جس کو لوگ بڑے شوق سے دیکھنے جاتے ہیں کتنے ہی بنی اسرائیلی اس میں دب کے مرے ہوں گے کتنے ہی وہ مسلمان تھے اپنے دور کے کتنے ہی مسلمان اس دور میں اتنی بڑی بڑی مشینوں کے بغیر किस तरह ये महल तामीर करते थे और किस तरह ये पिरामिड्स बनाते थे और वो गल गल के गिर जाते थे अंदर। लेकिन आज हम मुसलमान ही जाके उन चीज़ों को देखते हैं तो बस दफ़ा लोग चीज़ों को याद रखते हैं, लेकिन जिनकी कोशिशों से, जिनकी कुर्बानियों से, जिनके ब्रेन चाइल्ड वो होते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो सहाबा कराम के साथ मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाउल महदीन अल राशिदीन, कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थामना, दांतों से पकड़ लेना और नए नए कामों से बचना, क्योंकि दीन में हर नया काम बिदत है और हर बिदत गुमराही है। यह अबू दाऊद की रिवायत है 4607 नंबर की। तो इससे क्या पता चला कि सहाबा कराम कुरान और सुन्नत पर अमल करने में सबसे पहले थे। हमारे लिए अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का अमल काबिले हुज्जत है तो वो सहाबा कराम थे। सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन तीनों को कह लीजिए ये कि इस्लाम का हरावल दस्ता थे। और हरावल दस्ता आप समझते हैं, वो ग्रुप जो सबसे पहले दुश्मन को मीट करता है, यानी फ़ौज के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना, तो जो बिल्कुल फ्रंट पे जाते हैं, जिन्होंने वन ऑन वन बेस पे दुश्मन से मुकाबला करना होता है, वो हरावल दस्ता होता है। और आप देखिए जो सहाबा की कुर्बानियाँ थी वो तो आज हम सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा हर सहाबी हमारे लिए मिसले राह है। ये वो शख्सियात हैं कि जिनको अल्लाह ने शम्मे रिसालत से बराह रास्त फ़ायदा उठाने का मौका दिया। सहाबा कराम की रोशनी और आपका नूर बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई तालीमात से एब्जॉर्ब था, आपने उसको लिया था, और करीब तरीन ज़राए से फ़ायदा लेना, दीन लेना, यही बेहतरीन अमल होता है। यानी इसको इस तरह आज समझ लीजिए कि फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, आप किसी से बैठकर नॉलेज लेते हैं, उससे आपका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है, इसका मुकाबला कोई भी दूसरा मीडियम नहीं कर सकता। वो कंपनसेशन हो सकते हैं, वो अल्टरनेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो कभी नेमुल बदल नहीं होते। तो आप इमेजिन तो करिए कि सहाबा कराम बराह रास्त बैठ के अल्लाह के नबी से दीन लेते थे, उनके भटकने की कोई गुंजाइश थी? कभी आप इमेजिन तो करें, कभी आप किसी दीन की मजलिस में बैठकर डायरेक्ट तालीम ले रहे हो तो उस वक्त जो दिल की कैफियत है, आप उसको कई हज़ार गुना बढ़ा लें। एक एक सहाबी का दिल कितना रोशन होगा कि जहाँ रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उस्ताद की सूरत में, और जहाँ का नसाब कुरान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जिस ज़ुबान ने बोलने ही कुछ नहीं। आज तो उस्ताद 10 फालतू बातें करके 11वीं काम की बात कर सकते हैं, हो सकता है अपने कोई अंदर के इंटरेस्ट पढ़ाने के दौरान शो कर दें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते थे। तो आप कह सकते हैं कि फिर सहाबा कराम और उनके बाद के लोगों ने दीन के चश्मे साफ़ी से पानी पिया। साफ सुथरा दीन था उस वक्त, कोई पोल्यूशन नहीं थी। आप इमेजिनेशन में लाइए कि एक नया घर बना, बिल्कुल स्पॉट फ्री कह लीजिए, उस घर में जाना रहना, उसका क्या मज़ा है? कोई घर 20-25 साल बाद कई जगह से उधड़ा पुधड़ा हो, उसको मुकाबला कीजिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे दीन के अंदर कुछ रखने पड़ गए, कुछ इजाफे हो गए, कुछ ने रेनोवेशंस कर ली, कुछ ने उसमें बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली। सहाबा कराम की ये कोशिश होती थी कि दीन के खालिस चश्मे से पानी लें। बिदात दो चीज़ें दीन को प्ल्यूट करती हैं, याद रखिए, बिदात और ख्वाहिशात। माजी के लोगों ने दीन में बिदात शामिल की थी, खुशी से नेकी के नाम पे कुछ कर लेते हैं, चलो अब ये कर रहे हैं, हरज क्या है, हरज क्या है। और इसकी दलील तो हमें नबी सल्लम की वफ़ात के तकरीबन 60-70 साल के बाद के एक वाक़े से मिलती है। एक सहाबी गालिबन हज़रत इब्ने अब्बास थे, किसी ने उनको आके ख़बर दी, फ़लां मस्जिद में नमाज के बाद कुछ लोग जमा हुए और ऐसे एक सेमी सर्कल बना के, जिसको हल्का बनाया, और सब मिलके कहने लग गए, कुछ जिक्र करने लगे, अल्लाह या कुछ भी कोरस की शक्ल में, जैसे सब मिलके पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, अगर कल भी ऐसा हुआ तो फिर मुझे बताना। वो दोबारा आगे कहा, हाँ अब ये मामूल बनता जा रहा है। फिर वो सहाबी वहाँ गए और उन्होंने जाकर उन लोगों को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि देखो, अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन भी नहीं टूटे, अभी तो आपकी अजवाज भी जिंदा है, कुछ साल ही बाद की बात है ये, अभी तो आपका दीन उसी तरह मौजूद है और तुमने दीन में इजाफे शुरू कर दिए। आज के बाद अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें इस मस्जिद में नहीं रहने दूंगा। इस तरीके से उन्होंने दीन को महफूज किया। एक सहाबी ने अपने बेटे को किसी बात पे मना किया, औरतों को मस्जिद में भेजने की बात थी, और अमर बिन आस के खालिबन बेटे थे अमर बिन अलास, तो उनके बेटे ने कहा हम तो मना करेंगे, ऐसे कह दिया कि मैं तो अपनी बीवी को मना करूँगा मस्जिद में जाने से। تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے حدیث بتاتا ہوں، نبی کا قول بتاتا ہوں، اور تو اس کے مقابلے میں اپنی بات کرتا ہے، جا میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. اور روایت میں ہے کہ مرتے دم تک اپنے بیٹے سے نہیں بات کی. الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ، پیار بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. تو صحابہ کرام کو رول ماڈل بنا لیں. آج دین کے نام پہ مجاہدے، مراقبے، مناظرے اور چلے اور نہ جانے کیا کچھ نام ہے، تو ان میں کچھ ٹھیک ہو سکتے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن صحابہ کرام ایسے تھے. تو میں نے بتایا کہ پہلے دور میں جو دین میں اضافے ہوئے، دین جہاں سے بگڑا وہ بدعت تھی. آج کے دور میں دین جہاں سے بگڑتا ہے نا، وہ خواہش ہے. بلکہ اگر ایک جملہ بول دوں، کسی کا بولا ہوا کہ کل کے دور کا اختلاف علمی اختلاف تھا، دلائل کی بنیاد میں آئمہ کرام میں کچھ نہ کچھ اختلاف رائے ہوا ہوگا، آج کے دور کا اختلاف خواہشات کا اختلاف ہے. خواہش کہتی ہے حرام کو حلال کرو، خواہش کہتی ہے ایک تو حلال کر دو، خواہش کہتی کیا حرج ہے، خواہش خواہش خواہش. اور یاد رکھیے کہ جب دین پر باطل نظریات اور عقائد کی دھول پڑ جاتی ہے تو دین پلیوٹ ہوتا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں جس طرح بسر کیں، انہی کو دیکھ کر پھر تابعین، پھر تبع تابعین. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ڈائریکٹ استاد، پھر اس کا شاگرد، پھر اس کا شاگرد، تو بہتر سے بہتر ہوتے ہوتے، لیکن اگلے دور میں پھر لوگ بگڑتے ہی گئے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، یعنی سب سے پہلے صحابہ کرام، وہ رمضان المبارک کو ویلکم کیسے کہتے تھے. یا میں ہلکا سا خود کو بھی کانشیس کروں اور آپ کو بھی، عموماً اللہ ماشاء اللہ ہمارے ذہنوں میں صحابہ کرام کے رمضان کے ساتھ ہی کیا بات آتی ہے. میں اپنے دل کی بات روک کے آپ کو موقع دیتی ہوں، ہم کیا سنیں گے بھلا؟ کیا ذہن میں ان کی عبادات نہیں آئیں کہ وہ کتنے عابد تھے، کتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، کتنے نفل پڑھتے تھے، کتنے روزے رکھتے تھے؟ روزے تو رکھنے ہی تھے، یعنی کیا ذہن میں یہی نہیں آیا؟ یہی آتا ہے. آج ہمارے ذہنوں میں جب بھی ہم کسی بھی دین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہی آتا ہے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہوں گے، کئی کئی چھ چھ سات سات سپارے پڑھ لیتے ہوں گے، رات کو شبینے کرتے ہوں گے. ابھی رمضان جب آئے گا تو دیکھیے کیا کچھ لوگوں نے کرنا ہے. لیکن اب میں آپ کو جو حدیث سنانے لگی ہوں، یہ آپ کے اور میرے لیے کرائیٹیرین ہے. ہر سال ہی تقریباً رمضان سے پہلے میں یہ پوائنٹ ضرور اٹھاتی ہوں، اور وہ بات کیا ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام جب رمضان میں داخل ہوتے تھے تو کس حال میں داخل ہوتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر صحابی جب رمضان میں داخل ہوتے، یعنی رمضان کو ویلکم کیسے کہتا تھا، تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں کسی دوسرے کے لیے کینہ نہیں ہوتا تھا. یہ ہے ویلکم رمضان. دل کے برتن کو صاف کرو اگر اس میں عبادات کا بوجھ ڈالنا ہے. زمزم کو بھی اگر آپ گندے برتن میں ڈال دیں گے نا تو پینے کو دل نہیں کرے گا. دودھ کو گندے برتن میں ڈالیں گے پھٹ جائے گا. تو میں آپ کو اور آپ مجھے کہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے دلوں کے کینے دور کریں. کیوں بھلا؟ یہ حدیث، اب اس واقعات کو اس سے جوڑ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جن لوگوں کی عبادات قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہوتا ہے. اور کینہ سمجھتے ہیں؟ اینیمیٹی، اینوی، ایسی راہ جاتے کو برا لگتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا فرکشن، اریٹیشن ہونے لگتی ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر. اور بلیو می، آج کاپی قلم لے کر بیٹھے اور دل کی دنیا کاغذوں پہ لائیں، دسیاں لوگ ہیں ہمارے اب دل میں بیٹھے ہوئے، کوئی رشتہ داروں میں، کوئی خاندان میں، کوئی اپنے بھائی بہنوں میں، کوئی دینی ساتھیوں میں. اور دین کے کام کرنے والوں سے تو ہمیں ویسے ہی بڑا بیر ہے. دلوں کو صاف کریں. پہلا کام اگر آپ نے، میں نے صحابہ کی اس سنت پہ عمل کرنا ہے تو وہ کیا ہے کہ دلوں سے کینے نکال دیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا وفی الآخرہ. فرشتے نازل ہوتے ہیں کس کے اوپر؟ جس نے اللہ کو رب کہہ کر استقامت اختیار کی. آخر میں خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ٹینشن فری لائف، سٹریس فری لائف، پریشانی فری، غم فری، گرج فری. जो नेगेटिव लव्स है ना, आप सारे लिखें अपनी नोटबुक में घर जाके, ये एक्टिविटी है। बिलीव में आपको ऐसे लगेगा कि मेरे दिल की सफाई शुरू हो गई। क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके भी? हमारा घर जितना भी हम साफ करें, लेकिन इस्तेमाल के दौरान कुछ ना कुछ चीज़ें बिखरती हैं, फिर ऐसा ऐसा डस्ट पड़ने लग जाती है, फिर वॉशरूम भी क्लीनिंग मांगता है, होता है ना। आप इमेजिनेशन में लाए कि घर खूब मेस्टअप हुआ है। सच बताएं, जिन दिनों में घर मेस्टअप होते हैं, जो घर है वो तो मेस्टअप होंगे, होटल नहीं होते होंगे, घर तो होते हैं ना, उन दिनों का जहन जहन में लाइए। एक बोझ होता कि नहीं? मैं तो किचन में गंदगी हो तो मैं काम ही नहीं कर सकती। पहले मैं जाके सफाई शुरू करूंगी, सही करके, सेट करके, फिर जितना को टाइम बचेगा उसमें जो पकाना है पकाऊंगी, वरना हो सकता है मैं चीनी की जगह नमक डाल दूँ। इतना मैसी मेरा किचन है कि मैं कैसे खाना पकाऊँ? फर्क होता है ना। अब आप सोचें कि बिखरा हुआ घर है, एवरी थिंग इज मेस्टअप, और क्लीनिंग के लिए कोई आया, या आपने खुद की, 2-3 घंटे लगा के घर शीशे की तरह चमका, उसके बाद क्या दिल करता? यकीन करें, घर साफ हो तो सबसे पहले तो मेरा 2 नफिल पढ़ने को दिल करता है, स्पिरिचुअलिटी आने लगती है, रूह आती है। किचन साफ हो तो पकाते ही जाओ, पकाते ही जाओ, मज़े से मज़ा, हर चीज़ अपनी जगह पे आप ले रहे हैं। बस ये दिल का भी यही हाल है। जो दिल मेस्टअप है, जिसमें हमने जो जंक भरा हुआ है, लोगों के ड्रॉ खोले, अल्लाह रहम करे, किचन के ड्रॉज में से चमचियां भी निकलती हैं और नेल कटर भी निकलते हैं, और हो सकता है बच्चों की जराबे भी वहीं पड़ी हो। दिल को ऐसे ट्रैश कैन ना बनाए। यहाँ बैठे बैठे के मैंने अपने दिल में किसी के लिए कीना नहीं रखना। अब ये बात ज़रूरी है, इसलिए मुझे इसको एलेबोरेट करना चाहिए, क्योंकि हम साहबा का समझ रहे हैं ना। आप देखिए कैसे दिल का कीना निकले। आप रीजनिंग करें, कोई मुझे क्यों बुरा लगता है? बस अब कुछ लोग, एक जैसे हिडन जेलसी होती है, इवन सिबलिंग्स जो होते हैं ना, बहन भाइयों में भी होती है। एक भाई या बहन को अल्लाह ने ज़्यादा इज्जत दे दी, माल दे दिया, दूसरा उससे जलेगा, कहते नहीं कुछ। हम बस अब अपने अमीर रिश्तेदारों से जलते हैं, बड़े फजूल खर्च हैं, अल्लाह पूछेगा, बहुत ही इसराफ करते हैं। वो हमें मरूब करना चाहते हैं कि देखो हम कितने पैसे वाले हैं, तो हम मरूब थोड़ी हो रहे होते हैं, हम तो उनको दिल से कोस रहे होते हैं, अल्लाह पूछेगा इतने फजूल खर्च हैं। हाँ? अब आप सोचिए, अगर ऐसा है, किसी की दौलत की वजह से आप पर मैं दिल में बुझ रखते हैं, तो पूछिए ये किसका फैसला है? अल्लाह का, एक बात है। दूसरी बात है कि बहुत दौलत होनी क्या कामयाबी की दलील है? तो फिर अल्लाह ताला कारून को तो कुरान पाक में सूरत कसस में इस तरह पेश ना करता कि जिसको अल्लाह ने दुनिया में रुसवा कर दिया है ना। तो दिल को खाली करें। जिस बंदे से भी आप, फैमिली के या बाहर के या दोस्तों में, किसी से भी, किसी नेमत पे भी हैं, मतलब किसी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके दोस्तों में किसी के बच्चे बहुत जीनियस है, ए ग्रेड, हाई ग्रेड है, चलिए और कुछ नहीं, आपके बच्चे से ज़्यादा नंबर है, कितना शुरू हो जाता है, हाँ, ये क्यों नहीं पढ़ेंगे, इनके पास तो इतने पैसे हैं, इतनी ट्यूशन, ये है वो है, समझ गए? अब ये सारी बातों को लिखें, कोई खूबसूरत है बहुत, आपकी कोई दोस्त बड़ी दुबली है और आप बहुत मोटे हैं, उस पर कीना आ जाता है, ये देखें जरा पतली कमर है ना, इसलिए पहन पहन के दिखाती हैं, ये बात आप सबके दिल को क्यों लगी है इतनी? ये देखिए, ये अंदर के चोर हैं, बिलीव मी। मैं कहती हूँ जितने दिन आप जिंदगी के रह गए हैं, इसको कीना फ्री जिंदगी बना के तो देखें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप देखिए, दिल ट्रैश कैन बन जाते हैं, डस्टबिन बन जाते हैं, जब हर जज्बा अंदर, और कुछ लोगों की तो आदत है, देखा उसको, चल कैसे रही, खा कैसे रहे, बोल कैसे रहे, खाना कैसा था, दुल्हन कैसी थी, बड़ी लग रही थी, लड़का छोटा लग रहा था, चक्कर कोई लगता है, कोई शादी आपस की है, ये है वो, सास को देखा था, किसी का रिश्ता आ गया, आपकी भी बेटी है, आपकी दोस्त की भी बेटी है, अभी आपकी बेटी का नसीब नहीं अभी खुला हमारी जुबान में, नसीब तो खुले ही होते हैं लेकिन हम नहीं उसको समझ होते। अच्छा, अब उसका रिश्ता हो गया बड़े अच्छे से, तो वो तो आप बड़े शौक से बता रही हैं, तो आप अंदर से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, अच्छा देखेंगे, लग जाएगा, बता, बाद में देखना, उन्हें सोच लेना था, कर लेना था, तो इन सब जज्बों से निकले। देखिए, रमज़ान अब आए या 6 माह बाद आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर चाहें तो मैं इसको और भी एलेबोरेट करूँ, लेकिन मैंने इशारा दिया। रह गई बात, कुछ ऐसे लोग जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता, सियासतदान, बाज़ 2 मुख्तलिफ जमातों के मजहबी रहनुमा, कोई दूसरे मसलक का इमाम, हम उनसे शुरू हो जाते हैं। मतलब आप दीन का काम करते हैं ना शहर में, तो किसी और ने भी शुरू किया हुआ है, तो आप उनसे हर बात में उनके फ्लायर को देख के कुड़ेंगे, आप उनकी तरफ लोगों के आने को देखेंगे, आप उनके फेसबुक पे इतने लाइक्स देख के कुड़ेंगे। अब ये सारी बातों का सिरा जाके पता किधर मिलता है? बिलकदरी खैरी ही व शर्री ही मिन अल्लाह। ईमान की कमज़ोरी, हमारे ईमान का हिस्सा है कि तकदीर के हर फैसले पर राजी रहें। जिस वक्त मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा ना कि जो मुझे मिला ये मेरे रब का फैसला है, और जो किसी को मिला वो भी रब का फैसला है, जो मुझे नहीं मिला ये भी मेरे रब का फैसला है, तो फिर आप किसी के लिए ग्रज नहीं रखेंगे। और यहाँ वो हदीस भी याद रखिए कि अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक से 3 दिन तक एक सहाबी के बारे में लोग सुनते रहे कि आपने फरमाया कि आप जो शख्स यहाँ से गुजरेगा वो जन्नती होगा, और तीनों दिन एक ही सहाबी गुजरे और ग़ालिबन वो भी अमर बिन अलास थे अगर मैं भूल नहीं रही। तो सहाबा के दिल में तजस्सुस आया कि ये बड़े नेक होंगे, मैं भी देखूँ जाके क्या। एक सहाबी गए, उनके घर का दरवाज़ा नॉक किया, भाई मैंने कसम खा ली है किसी बात पर नाराज़ होके 3 दिन तक घर नहीं जाऊँगा, तो क्या मैं आपका मेहमान बन जाऊँ? बिस्मिल्लाह। तब इतने अहतमाम तो होते नहीं थे मेहमानों के आने पर जितने आज होते हैं। उन्होंने कहा 100 दफ़ा आए, एक हैं बल्कि आएंगे तो आपका भी रिस्क साथ मिलेगा और दुआएं मिलेंगी, बरकत होगी। रहा 3 दिन तक उनके घर में रह कर देखा, उनकी खुफिया नेकी ढूंढ रहे थे। अच्छा, हम किसी के पास जाएं तो हम उनकी खराबियां ढूंढ रहे होते हैं, उनके ऐब ढूंढ रहे होते हैं कि ज़रा अंदर खाता क्या है। इस पर भी एक वाक़या याद आ रहा है, लेकिन पहले ये पूरा कर लूँ। अगर तो वो उनकी खूबी देख रहे थे, लेकिन अपेरेंटली जो काम ये करते थे वो भी करते थे। उस दौर में ये तसव्वुर ही नहीं था कि नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, ये ना करे, वो ना करे। जाने का वक्त आया, कहा भाई सच बताऊँ, मैं कोई कसम वसम नहीं खा चुका था, मैं तो असल में आपके साथ रह कर आपका वो अमल देखना चाहता था जिसकी बुनियाद पर नबी सल्लम की खुशखबरी है, तो मैंने तो आपको अपने जैसे ही पाया। तो उन्होंने कहा भाई मैं कोई नेकी नहीं करता, बस ऐसा ही हूँ। तो वो जब जाने लगे तो पीछे से उन्होंने आवाज़ दी, उन्होंने कहा एक मुझे अपनी बात याद आती है जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर अच्छी है, और वो क्या कि मैं किसी दूसरे मुसलमान के लिए दिल में गिला गुस्सा नहीं रखता। क्या बस यही है, शुख कहते हैं इसको, सूरत हशर में इस पर बात हुई हुई है, दुआ भी है कि अल्लाह हमारे दिलों में से ईमान वालों की मोहब्बत डाल और उनका शुख निकाल दें। सूरत हशर की दुआ है, आप लोग उसमें से पढ़ के याद भी कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे शुभहात से। तो दुआएं मांगे, कहें अल्लाह से, हरम में जाए ना, रमज़ान आएगा, इफ्तारी के वक्त पे जमजम पीते हुए, बारिश में भीगते हुए, तहज्जुद के वक्त, जब भी कबूलियत दुआ का वक्त है, मांगे आज के बाद कि अल्लाह मेरे दिल से दूसरों की बातें निकाल दे। बिलीव में आप देखेंगे आपका दिल खुल जाएगा, जगह बन जाएगी। बस अब आप कहते हैं घर तंग हो रहा है, एक नई अलमारी चाहिए, कोई कहता ज़रा इसको साफ सही तो करो, जू ही वो अलमारी बाहर निकाल के सॉर्ट आउट करते हैं, आधी चीज़ें तो बेकार होती हैं और कुछ वैसे ही मेस्टअप थी। जब सही करके रखते हैं ना इतनी जगह बन जाती है, दिल को हमने मेस्टअप किया होता है। आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आप में से जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आते हैं, तो उनमें से कुछ ग्रुप्स में पिछले साल में 2010 का दौरे कुरान भेजा गया था, शायद आप लोगों तक पहुँचा हो, ऐप पर भी है अगर आप देखें तो, तज़किए नफ्स, उसमें एक पारे में सिर्फ इस पर बात हुई थी कीने पर एनवी, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। लेकिन ये काम करने का इस दुनिया में ही कर लें। अब वो दूसरा वाक्या सुना दूँ जो याद आया था, मुझे पता औरतों को वाक्यात से ज़्यादा दिलचस्पी होती है अहादीस की नस्बत है। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत वाक्या, दो मुख्तलिफ आइमा कराम थे, इमाम अहमद और इमाम शाफी, एक में से दूसरा दूसरे का मेहमान बना। तो बेटी थी ना जिनकी, जो एक होस्ट थे और एक गेस्ट थे, होस्ट की बेटी हर वक्त अपने बाप से अपने उस उस्ताद की तारीफ़ें सुनती थी। वो उस्ताद थे, आज जिन आइमा कराम के नाम लेके लोग झगड़ते हैं ना, आपको पता है एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द थे, हरम में चारों बैठा करते थे, एक वक्त की बातें। किस्सा मुख्तसर के इमाम अहमद और इमाम शाफी दोनों में से एक मेज़बान थे, दूसरे मेहमान थे। उनकी जो बेटी थी वो कहती थी कि मुझे बहुत शौक है अपने बाप के उस्ताद को मिलने का, देखने का, क्योंकि मेरे बाप उनकी तारीफ़ बड़ी करते हैं। कहा ठीक है, वो मौका बन गया। अब जब वो आए तो एक रात रहे उनके साथ, और फिर उसके बाद अगले दिन जाने लगे तो वो जो यंग बच्ची थी ना उसे रहा ना गया। कहने लगी कि अपने बाप से कि मैंने चंद बातें पूछनी है आपके उस्ताद से, इजाज़त है? कहा पूछ लो, अदब के साथ पूछने तो पूछ लो, क्या है? कहने लगी कि मेरे बाप तो आपकी बड़ी तारीफ़ करते थे, बट मैंने तो एक रात में आपकी 3 कमियां देख ली। अच्छा जी, अब आप सोचिएगा, ये बहुत नसीहत आमोज़ वाक्य, इसी सोच के साथ मैं सुन और सुना भी रही हूँ। कहने लगी कि मैंने तो आपके बारे में जो सोचा हुआ था, मुझे तो उसमें कुछ अब शक पड़ गया। कहा बोलो क्या सीखा है? कहने लगी मैंने तो ये सुना है कि मोमिन एक आंत से खाता है, यानी कम खाता है, बट मैंने देखा कल आप रात आए हमारे घर तो आपने तो इतना खाया, खूब खाया, तो फिर आप तो नेक ना हुए। एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि मैंने तो ये देखा हुआ है, सुना हुआ है कि मोमिन रातों को जागते हैं, तत्तजाफा जनूबुहुम अनिल मदाजी, तो आप तो सारी रात लेटे रहे। मैंने, क्योंकि वो घर भी तो एक झुग्गी होती थी ना, वहाँ कोई इतने बड़े बड़े इंडिपेंडेंट कमरे तो नहीं होते थे ना, कहा मैंने तो नहीं देखा कि आप रात को उठें, आप तो ऐसे ही हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आपके बारे में मशकूक कर रही है वो क्या है कि आपने सुबह उठ के बगैर वजू के जाके मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ ली। तो मुझे ज़रा क्लैरिटी तो दीजिए, ये आज के दौर का कोई बोल्ड बच्चा होता तो इतने प्यार से नहीं बोलता, वो तो कुछ और करता। अब ज़रा सुनिए, कहने लगे कि बेटा ये जो तुमने बात की है ना कि मैंने खाना बहुत खाया, तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। 6 महीने का सफ़र करके बहरी बेड़े के ज़रिए उस शहर में पहुँचे थे। उस दौर में होता क्या था कि लोगों ने जब सफ़र करना होता था तो लोग ज़्यादा होते थे, जहाज़ या कश्तियाँ थोड़ी थी, तो जैसे आज के दौर में कुरानदाजी होती है ना हज और उम्रे की, उस दौर में कुरानदाजी होती थी। तो जिसका नाम आ जाए उसने जाना है, और अगर उस दिन वो ना गया तो फिर पूरे 6 महीने उसको इंतज़ार करना होता था। ये कहते हैं कि जिस सफ़र पे मैं आ रहा था तो मेरा नाम आ गया, लेकिन जूं ही मैं आके बहरी बेड़े में बैठा, मुझे याद आया कि मैं तो सामान्य सफ़र घर भूल गया हूँ। कुछ ना कुछ तोशा साथ रखते थे, तब ना होटल थे और ना ऑन द वे स्नैक्स सर्व होते थे, और इतने महीनों का सफ़र होता था। तो कहने लगे मेरे पास दो चॉइसेस थी, कि यहाँ से उतरूँ और घर जाके अपने पैसों माल की या जो भी मेरा सामान्य सफ़र था वो ले आऊँ, उसमें ख़तरा ये था कि ये जहाज़ निकल जाएगा, और मैं रह गया तो मैं 6 माह बाद अब जाऊंगा, और ये किसी इल्मी सफ़र पे आ रहे थे वहाँ उस शहर में। तो इन्होंने कहा कि शायद इस 6 माह में मैं जिस उस्ताद से फ़ायदा लेने जा रहा हूँ उनको कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, अगली दफ़ा मेरा नाम ही ना निकले। तो मैंने कहा चुप करके बैठ जाता हूँ, मैं बात नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में निकल रहा हूँ, जो होगा। मैं इस डर से नहीं निकला, सफ़र शुरू हो गया। अब जब सफ़र शुरू हुआ तो सारे अपना अपना निकाल के खाते हैं ना, जो मेरे हम सफ़र थे ना, तो वो देखते थे कि मेरे पास खाना कुछ नहीं, तो वो इज़हार-ए मोहब्बत हमदर्दी मेरे सामने भी खाना ला के रखते थे। अब मुझे नहीं पता था, अब ये बात सुनिएगा, ये अब आपको सहाबा का तकवा दिखेगा जो बाद में फिर आपको आइमाए कराम तक दिखता है। अल्लाह इतनी इज्जत किसी को ऐसे ही नहीं देता, याद रखिए। अगर आज इन 4 इमामों के नाम पे उम्मत झगड़ रही है, लेकिन इन इमामों को तो अल्लाह ने दर्जे दिए हुए हैं ना, क्यों कोई किसी से जुड़ता है, कोई खूबी होती है ना। कहने लगे 6 महीने या 3 महीने का सफ़र था, मुझे नहीं पता कि जो मेरे साथी हैं हम सफ़र, उनमें से किसी का मुआश क्या है, किसी के पास जो खाना है उसमें कोई आमेजिश तो नहीं। और फिर खुद कहते हैं कि हालांकि मैं उस वक्त मुज़दर की कैफियत में आता था, कुरान में आता ना फमन इज़्तुर्र गैर बागिन वला आद, तो मेरे लिए वो खाना हलाल था, अगर चाहे वो किसी के हराम के बेसों से भी हो, मिसाल है। बट मैंने शुबहे से बचते हुए जब भी मुझे किसी ने खाना सर्व किया, मैंने उसमें से सिर्फ एक आधा लुकमा तोड़ा, कुते ला ये मुत, कि मैं मर ना जाऊँ। कल रात जब तुम्हारे बाप के घर में आया हूँ तो मैंने 6 माह बाद पेट भर के खाना खाया, इसलिए मैंने ज्यादा खाया। तकवे और ईमान की बातें, तो पहला शुबा दूर हो गया ना। हम कहते कुछ नहीं होता, खा लो कुछ नहीं होता, नहीं, ज़िंदगी बचाना और बात है, लेकिन हलाल को हराम और हम हराम को हलाल कहना और बात है। रह गई बात दूसरी कि भाई ये सारी रात सोते ही रह गए हैं, बिस्तर पे ही हैं, रात को उठ के तहज्जुद नहीं पड़ी। कहने लगे कि तुम्हें पता है कि जब मैं कल रात को आया तो ईशा में यही बाप तुम्हारा मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहा था, इसने एक आयत पढ़ी थी। कहते हैं कि इसने वो जो आयत पढ़ी थी ना तो मेरे जहन में रह गई, पूरी रात मैं उस पे गौर करता रहा और 300 मसले मैंने रात में उस एक आयत से अखज़ किए, मुझे नींद ही नहीं पड़ी। तो मैं तो गौर व फिक्र की में था और इल्म के सफ़र में था, तो उसमें तहज्जुद इबादत यही सब कुछ होता है। और रह गया तीसरा सवाल कि मैं बग़ैर वजू के नमाज़ पढ़ाया, तो मैं सारी रात सोया नहीं, मेरा वजू टूटा ही नहीं, ये तकवा होता है। और आप देखिए इससे बड़ी बातें लोग आपको मन घड़ा रिवायात और खुद साख्ता पीरों फकीरों की भी सुनाएंगे, बट मैं बहुत ज़्यादा मुहतात होकर आपको ये बातें सुना रही हूँ। ये वो वाक़यात है जो मैंने खुद सुने हुए हैं और पढ़े हुए हैं और जिनके दलाइल मौजूद हैं कि हमारे असलाफ में तकवा और नेकी कितनी थी। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक पहली चीज़ आपने देख ली کہ رمضان سے پہلے وہ اپنے دلوں کو صاف کر لیتے تھے۔ یقین کریں اس بوجھ کو لے کے نہ رمضان میں داخل ہوئیے گا۔ کسی بھائی سے روٹھے ہوئے نا کیونکہ اس نے آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں تھا لیا، معاف کر دیں اس کو۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں لین دین میں گڑبڑیں ہوتی ہیں نا، بھائی شکر کیجیے اللہ نے آپ کو اس سے بڑی مشکل میں نہیں ڈال دیا۔ کسی نے کاروبار کیا، دھوکہ دے دیا، آپ کے میاں کے پیسے لے گیا، ہو گیا سو ہو گیا، آپ اپنی فکر کیجیے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات ہے۔ پھر دوسری بات، اب آپ دیکھیے کہ جو بہت خوبصورت ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام کا معمول کیا تھا، 6 مہینے تک یہ دعا کرتے۔ ابھی رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے تک کتنے ہوں گے کوئی بتائے گا؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول اور جمادی الثانی۔ رمضان کے شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے سے ہی یہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں اس سال کے رمضان میں خوب عبادات کرنے کی توفیق دینا اور ہم نیکیاں کریں۔ یعنی پلانز کرتے تھے، جس کو آج کے دور میں آپ کہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ تک ایک ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں ان کو قبول کر لے، کیونکہ وہ جانتے تھے اصل چیز قابلیت نہیں ہے، قبولیت ہے۔ ہم گن گن کے اور ناپ تول کے اور وہ بالشتوں سے ناپ ناپ کے نیکیاں کرتے ہیں، اتنے پڑھے، اتنے سنے، اتنے عمرے، اتنی افطاریاں، اتنی مسجدوں کے قالین بدلے، لیکن صحابہ کرام پہلے سے شروع ہوتے تھے۔ تو آپ لکھ لیں کہ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں رمضان کب آئے گا، کیا ہوگا، اور وہ انتظار دو قسم کا ہوتا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں ہائے رمضان کب آئے گا، اور بعض کہتے ہیں ہائے رمضان آ رہا ہے، ہائے رمضان آ رہا ہے۔ کچھ کا سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے اور کچھ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ جلدی آئے۔ تو جو بار بار قرآن سنے، جو بار بار حدیثوں میں فضیلت پڑھے، جس کو یہ پتہ ہو کہ رمضان بندے کے گناہوں کو معاف کروانے والا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے اندر آپ دیکھیں نا کیا رمضان و الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہ معاف ہے، تو ایک عقل مند شخص ایک اچھے تاجر کی طرح کیوں نہ انتظار کرے؟ آپ دیکھیے دنیا میں اپنے دیکھیں سیزنس ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں کہتے ہیں جی عید سے پہلے دکانداروں کا سیزن لگتا ہے، چوڑیاں بکتی ہیں اور کپڑے بکتے ہیں۔ اب تو خیر سارا سال ہی ان کی عید ہے ماشاء اللہ، ہر موقع پہ 4 پیسوں کی سیل لگا کے ہم سے لوٹ لیتے ہیں نا، لیکن وہ ان کا کام ہے، ہم ان کو کیوں کریں؟ لیکن ایک سچا مومن جانتا ہے کہ رمضان کیا ہے۔ چند روایتیں نوٹ کیجئے گا کہ صحابہ کرام رمضان کا اتنا انتظار کیوں کرتے تھے۔ اب یہ جو پوائنٹ دے رہی ہوں کہ صحابہ کرام رمضان کا انتظار کرتے تھے، آپ اور میں بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے یا وہ کیوں کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ سورۃ قصص آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اس نے ان میں سے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ رمضان المبارک 12 مہینوں میں سے وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت ہے، اللہ نے اس کو نزول قرآن کے لیے چنا۔ سارا سال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن رمضان کو اللہ نے خاص چنا۔ جیسے اب دیکھیں عشرہ ذوالحجہ ہے، ایام تشریق ہیں، ایام الید ہیں، یوم عاشور ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، لیکن جو خوبی رمضان کے اندر ہے، جو اس کی شان ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، ہم تو ایسے کہتے تھے قرآن نازل ہوا، کیا ہے قرآن؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ہدایت والا، لوگوں کو جہالت سے نکالنے والا، کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی، ایمان کی روشنی دینے والا، یہ قرآن تھا نا۔ اور سب سے بڑی بات ہے حق اور باطل کا فرق بیان کرنے والا۔ تو رمضان کی اہمیت سے صحابہ کرام بہت آگاہ تھے، اور رمضان ہی وہ مہینہ جس میں لوح محفوظ سے قرآن اس دنیا میں آیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر کی پہلی آیت ہے۔ صحابہ کو کیوں انتظار ہوتا تھا؟ دوسری وجہ، کیونکہ اس مہینے میں وہ ایک رات آتی ہے کہ جس کی عبادت 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ کہ صحابہ کو رمضان کا انتظار کیوں ہوتا تھا، کیونکہ ان کو صحیح بخاری کی روایت 3014 یاد تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کوئی روزہ رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ अच्छे ताजिर को इंतज़ार होता है ना किस जगह बिट देनी और कहाँ सौदा लेना है। सहाबा कराम इन बातों को समझते थे। और चौथी बात के सहाबा रमज़ान का इंतज़ार क्यों करते थे, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत उनको याद थी कि ये वो मुमताज़ और बाबरकत महीना है जिसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। आप सोचें ना कि शयातीन बंद हो गए हैं, ये आज की ज़ुबान में ऐसे ही है कि जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन एक महीने के लिए सारी रुकावटें ख़त्म, गवर्नमेंट सारी सेक्शंस ख़त्म कर दे, टैक्स फ्री कर दे, अब करो, तो कितनी खुशी का वक्त होगा। वो सहाबा किराम को इस चीज़ का पता था। और ये बुखारी की रिवायत 3277 और मुस्लिम की 1079 है, आप ख़ुद भी ये हदीसें जाके पढ़ें, देखें, सुने। फिर इसके बाद सहाबा किराम इस महीने का क्यों इंतज़ार करते थे, इसका छठा नुक्ता क्या है, क्योंकि उनको पता था कि ये वो महीना है जिसमें दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, आप आते इधर और ये हॉल के दरवाजे बंद होते हैं, कितनी दूर से आए थे, गाड़ियों में आए थे, वापस चले जाते हैं, और अगर दरवाजे खुले हों तो ये किस बात की अलामत है, वेलकमिंग। असल में दरवाज़ा बंद होने पे हम नहीं परेशान होते, हम ये सोचते हैं कि कोई है हमें वेलकम करने वाला, प्रोग्राम है भी कि नहीं है, राइट, मुझे गलती तो नहीं लगी। तो ये रमज़ान की खूबियाँ थी। और इसके बाद सहाबा को एक और बात याद थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें रोज़ेदार को अल्लाह ताला दो खुशियाँ देता है, एक अफ्तार के वक्त यानी जब सूखी रगें तर होती हैं, और दूसरा ये है कि जब अल्लाह से मुलाकात करेगा। तो सहाबा इंतज़ार करते थे, ये भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नंबर सब मेरे पास मौजूद है, अगर आप लेना चाहें ले ले, बोझल ना हो इसलिए छोड़ देती हूँ कुछ चीज़ें। लेकिन सहाबा को इसका एहसास था। अब जितनी मैं हदीसें कोट कर रही हूँ आप सबने पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं 20 बार, क्या हमारे दिल में अभी से ये शौक आ रहा है कि तकरीबन 1 सवा महीने के बाद वो महीना आ रहा है कि जिसमें हमें खुशियाँ मिलने वाली हैं, हमारे गुनाह माफ़ होने वाले हैं, हम शैतान के चुंगल से बच जाएंगे और हम एक रात इबादत करके 1000 रातों की इबादत ले लेंगे। और सहाबा को इसलिए भी इंतज़ार होता था कि उनको पता था कि रोज़ेदार के मुंह की बू या खुशबू या स्मेल अल्लाह को मुश्क और कस्तूरी से भी प्यारी है। ये बुखारी की रिवायत है 1894। अब आप और मैं कहते हैं स्मेल आ रही है, अल्लाह को वो स्मेल इतनी प्यारी लगती है तो आप देखिए कि उसके बाकी अमल कैसे प्यारे लगते होंगे। फिर आठवीं वजह के सहाबा क्यों इंतज़ार करते थे रमज़ान के आने का, क्योंकि उनको पता था कि इस महीने में किया हुआ उमरा नबी सल्लम के साथ हज के बराबर है। ये इब्ने माजा बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मौका मिल जाए तो ये एक खुशी की बात है। फिर इसलिए भी सहाबा इंतज़ार करते थे कि इस महीने में इबादतदार के लिए जो रोज़ा है ये जहन्नुम के अजाब से ढाल बन जाता है। असौमो जुन्ना हदीस सुनी होगी, एक टीवी पे भी अक्सर आती थी कि रोज़ा एक ढाल है, आग से बचा लेता है, ये भी बुखारी की रिवायत है 1894 नंबर। फिर इसी तरह से सहाबा को इस महीने का इंतज़ार क्यों होता था, क्योंकि उनको पता था इस महीने में एतिकाफ किया जाता है जिसमें जमकर अल्लाह के लिए इबादत की नियत से बैठना, इंसान को ये लज्जत तभी पता चलती है जब उसको अल्लाह सुबहाना तआला से मोहब्बत होती है। और सबसे बड़ी बात सहाबा को, और मुझे पता है कि आप इस पे बहुत खुश होंगे क्योंकि हम में से भी अक्सर लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार होता है, कि सहाबा जानते थे कि इस महीने में नबी सल्लम जिब्रील अमीन के साथ मिलकर कुरान पाक की दोहराई करते थे, आज जिसको हम दौरे कुरान कहते हैं। ये बुखारी की रिवायत है किताब बदल वही में। तो आजकल मेरा ख्याल है कि आप भी इससे इतफाक़ करेंगे कि बहुत सारी सिस्टर जो हर साल दौरे कुरान करती हैं उनको रमज़ान का इंतज़ार इसलिए भी होता है कि दौरे कुरान करेंगे। तो बस अल्लाह ताला आपको मुझे नसीब करे। फिर इसी तरह सहाबा को पता था कि इसकी रातों में क़यामुल लैल होता है, और सबसे बढ़कर यह है कि इस महीने की एक नेकी 70 के बराबर है। तो किस्सा मकसद यह है कि सहाबा कराम को इस महीने की खैर और बरकत की वजह से इसका इंतज़ार होता था।